इस कार्यक्रम के सभी पात्र, उनके नाम, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं तथा किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, घटना या स्थान से इनकी समानता एक संयोग मात्र है। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति, धर्म या समुदाय को आहत करने का नहीं है। भूत प्रेत और किसी भी अंधविश्वास को हम चैनल या कंपनी दावा नहीं करते और ना ही बढ़ावा देते हैं।
कहानी रोगी गाना पर कृष्ण काम के साथ
आगे आइए, मैं कृष्णकांत एक बार फिर लेकर आ गया हूं कहानी रोकी सिर्फ गाना पर। दो बातों से आप कभी मुंह नहीं फेर पाओगे, रो की दुनिया और दुनिया में रो। ये कहानी है उस एक रो की जो अपनी दुनिया को छोड़ के इस दुनिया में आ गई है। आज की कहानी का नाम है शांत गुड़िया। तो बात है सन 1913 की। तब आज के शिमला के आगे ही एक बड़ी ही खूबसूरत और शांत सी जगह पे मीरा साली का परिवार रहने गया था। मीरा के पति का काम वहीं पास के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही हो गया था। पूरे परिवार में मीरा, उसका पति, एक 2 साल की बच्ची और एक नौकरानी थी जो वहां बसने गए थे। अपने घर को चुन लिया ये एक बात है, पर क्या घर ने आपको चुना है ये बात बहुत जरूरी होती है। मीरा और उसका पति बड़े ही आजाद ख्याल के लोग थे, इसीलिए जब उनकी नौकरानी सविता ने उन दोनों को कहा कि किसी भी घर में जाने से पहले गृह शांति करवा लेनी चाहिए, तो उसकी बात को पूरा नजरअंदाज किया था उन लोगों ने। और अब उनका परिवार अपनी बग्गी से उस घर के करीब पहुंचने वाला था। उस घर के सामने खड़ा था पूरा परिवार, एक छोटा मगर खूबसूरत और वीरान जगह पे अकेला सा घर था। मीरा और उसके पति रजत को वहां पे सिर्फ खूबसूरती नजर आ रही थी, जबकि सविता न जाने किस बुरी सी आहट और दुर्गंध को महसूस कर रही थी। उसने सामने घर को देखा जो से कुछ 30-35 कदम की दूरी पे था। घर के सामने सूखा सा बागीचा और आसपास सिर्फ झाड़ियां सी। घर के सामने एक सूखा सा पेड़ भी था जिसपे एक भी पत्ती का निशान तक नहीं था, और उस पेड़ को देखकर यूं लग रहा था मानो कई साल से ये पेड़ अपने वीराने को समेटे हुए है। उस पेड़ को देख के सविता को कुछ एहसास सा हुआ, पर अभी उसके साहब लोग उस घर को देख के खुश थे, तो सविता ने कुछ भी कहना सही नहीं समझा। वो मौके का इंतजार करना ही ठीक समझी। उसे उस पेड़ को देख के कुछ गलत होने का आभास हो रहा था। अभी सारा परिवार वहां खड़ा ही था कि मीरा की 2 साल की बच्ची दौड़ के घर के अंदर जाने लगी। जैसे उसे इस घर के अंदर जाने की जल्दी थी।
देखो मीरा, आई गेस प्रिया को हमसे ज्यादा पसंद आया है ये घर। सी कैसे भागे जा रही है, सो क्यूट।
आई नो, पीयू ने ऐसा तो पुराने घर में भी नहीं किया था। मतलब ये घर पीयू को पसंद है और मुझे भी तुम्हारी ये चॉइस काफी पसंद आई। बस ये सूखे गार्डन का कुछ करो। हाँ
अरे भाई तुम टेंशन मत लो, मैं सब सेट कर दूंगा। कल ही 2 मजदूर बुलाया है, वो आएगा इसको साफ कर देगा और फिर यहाँ पर अच्छा सा गार्डन बन जाएगा तुम्हारी चॉइस का।
सो क्यूट।
मीरा और रजत अपनी दुनिया को बसाने के सपने देख रहे थे। वहां उनकी बच्ची दौड़ती हुई पहुंच गई उस घर के दरवाजे के सामने और फिर वहां खड़ी खड़ी खेलने लगी, हंसने लगी, जैसे अंदर से कोई उसे पुचकार रहा हो। बच्ची अपने हाथ पे हाथ मार के ताली सी बजा रही थी, जैसे उसे बड़ा मजा आया हो। सविता ये सब देख रही थी और उसकी रूह डर से कांप रही थी। पर वो ये सब रजत या मीरा से नहीं बोल सकती थी। पूरा परिवार घर के अंदर गया। वहां का नजारा देख के खुश था। सविता ने भी खुद को नॉर्मल सा दिखाया और फिर उन्हीं की खुशी में खुश हो गई। उसे भी लगा शायद ये सब उसके मन का भ्रम हो जो नई जगह पे जाने पे हो ही जाता है। शायद ये भी बस वैसा ही एक ख्याल भर हो।
कहानी रोकी, गाना पर कृष्णकांत के साथ।
रात हो चुकी थी, सबने खाना खा लिया था और अब वक्त चला था नींद की आगोश में खुद को झोंक देने का। रजत और मीरा अपने कमरे में गए। एक कमरा छोड़कर ऊपर ही सविता का भी कमरा था, जहां से घर का सामने का हिस्सा खिड़की से दिखता था, खासकर वो पेड़। सविता अपने कमरे में थी। पीयू कभी सविता के साथ सोती तो कभी अपनी माँ के साथ। आज वो सविता के पास ही लेटी थी। पीयू को सुला के सविता ने कुछ काम निपटाया और फिर सोने की तैयारी में आ गई। बिस्तर को थोड़ा सा सही करते वक्त उसकी नजर खिड़की के बाहर उस पेड़ पे पड़ी। वहां से कुछ रोशनी से आ रही थी। सविता ने खिड़की पे ध्यान लगाया और कुछ देखने की कोशिश की। थोड़ा मुश्किल सा लगा तो खिड़की को खोला। खिड़की के बाहर जैसे उसने देखा उसकी नजर पेड़ पर बैठे एक कौवे पे पड़ी जो कुछ अजीब सी हरकत कर रहा था। दरअसल वह खुद को चोंच मार रहा था। सविता को कुछ अटपटा सा लगा और उसने ज्यादा ध्यान लगाया। कौवे ने सविता की तरफ देखा। सविता इन सब हरकतों पे गौर कर रही थी। उसने देखा कि पेड़ पे जैसे 4-5 पत्तियां निकली हैं पर सुबह तो देखने में लगा था कि इस पेड़ पे कई साल से कोई पत्ता नहीं आया। सविता को यह सब अजीब सा लग रहा था। तभी अचानक उस कौवे ने खुद के छाती पे जोश मार के खुद को लहू लुहान कर लिया। सविता अपना मुंह ढक के डर ही रही थी कि वो कौवा पलटा और खिड़की की तरफ तेजी से आया। डर से सविता ने तुरंत खिड़की बंद कर दिया। ऐसा लगा मानो उस खिड़की से जोर से टकराया हो। सविता खौफ में थी। तभी उसे पीछे से बच्ची की आवाज आई।
अब तू मरेगी।
सविता की चीख निकल पड़ी। रजत और मीरा भाग के उस कमरे तक पहुंचे, सविता से पूछा और सविता ने घबराते हुए सारा हाल बताया। रजत को लगा सविता को थकान की वजह से डरावने सपने आए हैं, क्योंकि पीयू अभी भी सो रही थी एकदम गहरी नींद में। रजत ने इस बात को आधार मान के सविता को यकीन दिलाया कि वो नींद में ही है और इसी वजह से उसने ये महसूस किया होगा, ये नॉर्मल है। उसके बाद रजत ने पीयो को लिया और अपने कमरे में चला गया। सविता को भी यकीन हुआ कि हो सकता है कि यह उसका भ्रम हो, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, बच्चे तो एक चम्मच के गिरने पे उड़ जाया करते हैं, फिर पीयू सविता की इतनी जोर से चिल्लाने पर भी क्यों नहीं उठी? जानते हैं क्यों? क्योंकि जागते वो हैं जो सोए हो, उन्हें कोई नहीं उठा पाया जिसने आंखें मूंद रखी हो। तुम्हारे घर में भी तो बच्चे हैं, उन पे कभी ध्यान देना। सुना है बच्चे और जानवर सबसे पहले रूह को महसूस कर लेते हैं। कुछ दो दिन ही गुजरे थे पर अब कई तरह की अनजानी सी हरकतें होने लगी थी उस घर में। चुड़ियों का उस घर के आसपास मरना और रात को उल्लू का रोना तो जैसे आम बात सी हो गई थी। मीरा और रजत को जहां ये सामान्य घटना लगती थी, वहीं सविता को अब इसमें कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। वो थोड़ी थोड़ी पूजा पाठ का सहारा लेने लगी थी। अब पियो को भी कभी कभी बुखार सा रहता था। अक्सर ऐसे ही एक शाम को पीहू को डॉक्टर साहब ने कुछ दवा देकर सुला दिया था। नीचे रजत सविता के साथ बहस कर रहा था और उसे अंधविश्वास से दूर रहने की नसीहत दे रहा था। तभी ऊपर के कमरे से पीहू की हंसने की आवाज सी आने लगी। ये कोई आम बात नहीं थी। कुछ खौफ मीरा और रजत के मन में भी आया था और सविता का मन मजबूत हो चुका था कि ये पक्का किसी आत्मा का ही काम है। सारे चुप से चलते चलते ऊपर के कमरे की तरफ बढ़े। ऊपर के कमरे में आते ही धीमी से दरवाजा खोला। सामने पीयू दीवार की तरफ बैठी हुई थी जमीन पर। और उसके बाल खुले से। वो इस वक्त झूम रही थी, पर उसे तो डॉक्टर सुलहा के गया था। रजत ने हिम्मत करके उसके करीब जाने की कोशिश की और वहां जाते ही उसकी चीख सी निकली।
पियू,
पियू की मुंडी,
पियू
अपने आप पलट के दूसरी तरफ आ गई। उसके गंदे से दांत थे और साथ में उसके हाथ में एक कौवा, जिसे वो बड़ी बेरहमी से चीर फाड़ के खा रही थी। उसकी आंखें सफेद थी। सविता ने हिम्मत जुटाई और कुछ मंत्र बोल के उसके ऊपर चादर डाली, मानो सब शांत हो गया।
पियू, ये क्या हो रहा है? ये क्या था?
मेरी पियू। साहब, यही तो बता रही थी, इस घर में रूह है। शुक्र है आज सुबह उस बाबा से मुलाकात हो गई और उसने वो ताबीज दे दिया था। अब हमें इस घर में और नहीं रुकना चाहिए, इससे पहले ये कोई और बड़ा हादसा बने यहाँ से चले जाते हैं। ये रूह हमें नहीं चाहती।
और पियो?
बाबा ने बताया है ये एक जख्म उम्र भर के लिए दे गई है। अब हमारी पियू हमेशा शांत गुड़िया बन के रहेगी। जिंदा तो रहेगी पर अपनी दुनिया में ही जिएगी। अब चलो साहब, इससे पहले कि जिंदगी भी छोटी लगने लगे।
उस रोज की घटना के बाद सच में पियू ने कभी जबान नहीं खोली। वैसे वो घर आज भी वही है, शिमला वगैरह तो आप जाते ही होंगे, कभी तलाश कीजिएगा उस घर को। वो घर आपका इंतजार आज भी कर रहा है, इतने सालों बाद भी। कभी वक्त मिले तो महसूस कर लीजिएगा। मेरा क्या है, मैं फिर आऊंगा किसी नई कहानी के साथ, किसी और जगह की रूह से आपकी मुलाकात कराने। मैं कृष्णकांत एक बार फिर लेकर आऊंगा कहानी रूह की, सिर्फ गाना पर।
कहानी रूह की, गाना पर, कृष्णकांत के साथ। क्रिएटेड बाय तारिक अहमद।